सार जो कुंदकुंदाचार्य देव ने इसकी रचना की है उसके हम गाथा 39 से 43 पढ़ने के पहले कलश 33 नंबर का जो था वो हमने कल देखा था। इस 33वें कलश में हमें ज्ञान की महिमा बताई है और उसकी बात और स्वामी जी के उसके ऊपर के विचार जो है वो भी देखे। अभी हम पृष्ठ क्रमांक 7 पर आए हुए हैं और वहाँ हम कलश का जो भावार्थ है उसके ऊपर के प्रवचनों को देखेंगे। देखो अभी क्या कह रहे हैं, आ ज्ञानना महिमा ज्ञाननो महिमा कहो वर्तमान ज्ञान वर्तमान प्रकट ज्ञानो आ महिमा बतावियो छे। जीव अजीव एक थई रंगभूमि मां प्रवेश करे छे तेमने आ ज्ञान ज भिन्न जाने छे। जेम नृत्य मा कोई स्वांग आवे तेने जे यथार्थ जाने तेने स्वांग करनारो नमस्कार करी ने नमस्कार करी पोतानु रूप जेवु होय तेवु ज करी ले छे। ये तो इसके बारे में तो हमने कल बताया था, अगर किसी को नहीं समझा हो तो पूछ लेना। नृत्य यानी यहाँ नाटक समझना, और जो स्वांग लेके आवे और उसके स्वांग को कोई पहचान लेवे तो पहले तो इतनी ईमानदारी थी कि वह निकल जाता था। ये रूपक है, जैसा सम्यक दृष्टि जीव है वह जीव को जुदा और अजीव यानी शरीर को जुदा ऐसा जब पहचान लेता है तब उनका जो दोनों मिलकर जो कोई नाटक चल रहा था यानी इस जीव को खोटे रास्ते पे ले जाने का जो कार्य होता था वो रुक गया, क्योंकि उसने जीव भी अलग है और शरीर अलग है, ये चेतन है और वह जड़ है, जीव अजीव इस तरह से पहचाना गया। वो कौन पहचानेगा, सम्यक दृष्टि ही पहचानेंगे। तेवी रीते आई पन आ ज्ञान राग ने राग रूपे, अब यहाँ तो शरीर की तो बात छोड़ो, राग ने राग रूपे અને જ્ઞાનને જ્ઞાન રૂપે યથાર્થ જાણી લે છે ત્યારે જે જે સ્વરૂપ જેનું છે તે તે સ્વરૂપે તે ભિન્ન પડીને રહે છે। જ્ઞાન જ્ઞાન રૂપે રહે છે અને રાગ રાગ રૂપે રહે છે, પોતપોતાના સ્વરૂપમાં બંને ભિન્નપણે રહે છે। આવું જ્ઞાન સમ્યક દ્રષ્ટિ પુરુષોને હોય છે, જેવી વસ્તુ પૂર્ણ સત્ય છે તેવી દ્રષ્ટિ તેનું નામ સત દ્રષ્ટિ, સત યાને જ સહી સચ્ચી એટલે સમ્યક દ્રષ્ટિ છે। ક્યાં કહેતે, દેખો યે જૈસા વસ્તુ કા સ્વરૂપ હૈ વૈસા સત્યા સચ્ચા જ્ઞાન સમ્યક દ્રષ્ટિ કોઈ હોતા હૈ, વો કૈસા હૈ कि जैसी वस्तु पूर्ण है वैसी उसकी मान्यता भी हो जाती है, इसलिए उस दृष्टि को सत दृष्टि ऐसा कहने में आता है। और ये इसी का दूसरा नाम सम्यक दृष्टि है। सम्यक यानी भली प्रकार से, सही प्रकार से जो मान्यता है उसको सम्यक दृष्टि कहेंगे। भगवान आत्मा पूर्ण प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप छे, सत एटले शाश्वत, ज्ञान ने आनंद स्वरूप परिपूर्ण वस्तु, आवा सतनी जेने दृष्टि थई ते सम्यक दृष्टि जीव छे। सम्यक दृष्टि ने ज आवु राग ने ज्ञान ना भिन्नपना नु यथार्थ ज्ञान होई छे। मिथ्या दृष्टि आ भेद ने जानता नथी, दयादान व्रतादि जे राग आवे तेने अज्ञानी पोतानु माने अने तेनो करता थईने करे छे। क्या कह रहे हैं कि राग करने लायक है, करना चाहिए। राग यानी यहाँ शुभ राग ही लेना, और क्या है तो करना चाहिए, और वो स्वयं उसका कर्ता बनकर उसको करने की चेष्टा करते हैं। तो क्या वास्तव में वो राग कर सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं? बोलो इंदुबेन। तो हाँ, मैंने राग वो नहीं करता है ऐसा जो कहने में आया, वो क्यों ऐसा मैं पूछ रहा हूं। हाँ, विभाव है तो आप उसी को गोल गोल फिरा रही है। देखो देखो, आपको ये कहना है, मैं समझ गया आप सही कह रही हैं, लेकिन वह तो राग जो है ना, वह जीव क्यों नहीं करता ऐसा कहने में आता है, क्योंकि विभाव करना यह उसका स्वभाव माना जाएगा, तो विभाव से दूर कभी होगा ही नहीं। ख्याल में आप वही कहना चाहती थी लेकिन कनेक्ट नहीं कर रही थी। हाँ, ख्याल देखो देखो बात ख्याल में ही। देखो यहाँ क्या लिखा है, देखो देखो कहाँ गया, नीचे थे क्या? देखो सत एटले नहीं, ये तो हो नहीं हुआ है अभी, ये वो हो गया। सम्यक दृष्टि आवु ज्ञान भिन्न यथार्थ ज्ञान हो जाए।
नीचे से दूसरी लाइन।
तेने अज्ञानी पोतानो माने छे अने तेनो करता थईने करे छे। ये मूल भूत मूल में क्या मान्य गड़बड़ है कि पोतानो माने छे, यानी उसमें ऐसा मानता है कि ये मेरा है, मेरा ही स्वरूप है और मैं ही वह हूँ, वो मेरे में है और वो मेरा है, इस तरह से उस राग को वह स्व का मानता है और उसका कर्ता समझकर उससे करता है। और जभी तो आप कह रहे कि वो ज्ञाता है उसका। मिथ्या दृष्टि जीव साधुपन अनंतवार थयो अने अनंतवार पंच महाव्रत पाड़िया, पन ए तो बधा विकल्प छे, ए विकल्पो ने अज्ञानी करता थईने करे छे, केम के राग ने ज्ञान ना भेद ने ते जानतो नथी। राग ने स्वभाव ने अज्ञानी तो एक पने माने छे, सम्यक दृष्टि ने ज राग ने स्वभाव नी भिन्नता नु यथार्थ ज्ञान अने श्रद्धा होई छे। ये उनके दोनों में फर्क बताया। अब आगे पीछे चलते हैं दोबारा। पेज नंबर 2 पर आइए, इसके पहले तो नहीं है ना।
गाथा पढ़ेंगे अभी।
हाँ।
अपानमयानंता मूढ़ादु परप्पवादिनो केई, जीवम अच्छवसाणम कम्मम चतहा परुवेन्ति। अवरे अच्छवसाणेषु शिवमन्दानुभागगं जीवं मन्नन्तितहावरे नोकम्मं चाविजीवोक्ति कम्मसुदयं जीवं अवरे कम्मानुभागमिच्छन्ति तिव्वत्तणमन्दत्तण गुणैः जोऽसो हवदि जीवो जीवो कम्मं वयं दोन्निवि खलु के जीवमिच्छन्ति अवरे संयोगेण दु कम्माणं जीवमिच्छन्ति एवं विहा बहुविहा परमप्राणं वदन्ति दुम्मेहा तेन परमर्थवादी निश्चयवादी हि निदिष्ठा आत्मानं जानन्तो मूढास्तु परात्मवादिनः केचित् जीवमध्यवसानं कर्म च तथा प्ररूपयन्ति अपरे अध्यवसानेषु तीव्रमन्दानुभागगं जीवं मन्यन्ते तथा अपरे नो कर्म चापि जीवैति कर्मण उदयं जीवम् अपरे कर्मानुभागमिच्छन्ति तीव्रत्वमन्दत्वगुणाभ्यां यः स भवति जीवः जीवकर्मोभयं द्वे अपि खलु केचिज्जीवमिच्छन्ति अपरे संयोगेन तु कर्मणां जीवमिच्छन्ति एवंविधा बहुविधा परमात्मानं वदन्ति दुर्मेधसः तेन परमार्थवादिनः निश्चयवादिभिर्निर्दिष्टा को मूढ आत्मतणाजान परात्मवादी जीवजे छे कर्म अध्यवसान ते जीव एम ए निरूपण करे वरी कोई अध्यवसान मा अनुभाग तीक्षण मंदजे एने जमाने आत्मा वरी अन्य को नो कर्मने को अन्य माने आत्मा कर्मोतना वरी उदयने को तीव्र मंद गुणों सहित कर्मोतना अनुभागने को कर्मने जीव उभय मिलने जीवनी आशाधरे कर्मोतना संयोगति अभिलाष को जीवनी करे दुर्बुद्धियो बहुविध आवा आत्मा परने कहे ते सर्वने परमार्थवादी कया न निश्चयवादिये को मूढ आत्मतणा अजान परात्मवादी जीवजे छे कर्म अध्यवसान ते जीव हे मये निरूपण करे वरी कोई अध्यवसान मा अनुभाग तीक्षण मंदजे एने जमाने आत्मा वरी अन्य को नो कर्मने को अन्य माने आत्मा कर्मोतणा वरी उदयने को तीव्र मंद गुणों सहित कर्मो तणा अनुभागने को कर्मने जीव उभय मिलने जीवनी आशाधरे कर्मो तणा संयोगति अभिलाष को जीवनी करे दुर्बुद्धियो बहुविध आवा आत्मा परने कहे ते सर्वने परमार्थवादी कया न निश्चयवादी।
देखो यहाँ पर 39 से लेकर 43 तक गाथाएं दी है पांच। अब इसमें क्या बात बता रहे हैं कि जो अन्य अन्य जीव अन्य अन्य प्रकार से आत्मा को मानते हैं उनका यहाँ वर्णन किया गया है। अनेक लोगों की कैसी भिन्न भिन्न मान्यता है कि जो मिथ्या मान्यता है उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। देखो पृष्ठ क्रमांक 30 पर हम गाथार्थ को देखेंगे। आत्मानम अजानंतः आत्मा ने नहीं जानता थका परात्मवादिनः परने आत्मा कहनारा केचित मूढ़ा तू कोई मूढ़ मोही अज्ञानियो तो अध्यवसान सॉरी अध्यवसानम अध्यवसान नेच तथाच अने कोई कर्म ने जीवम प्ररूपयति जीव कहे छे। अभी देखो भिन्न भिन्न लोगों की जो जो मान्यता है उसमें से पहली मान्यता क्या बताई है कि जो सही आत्मा का स्वरूप है उसे नहीं जानता हुआ क्या कहते हैं दूसरे को पर को आत्मा कहना रहा ऐसा कोई जो मूढ़ होगा वो क्या कहते हैं उसके तीन विशेषण दिए कोई मूढ़ मोही और अज्ञानी। यानी देखो यहाँ तो मोही कहने से उसको दो प्रकार से कहा जा सकता है एक दर्शन मोहनी सहित वाला और एक चारित्र मोहनी सहित वाला। और क्या है मूढ़ मूढ़ी का अर्थ है यहाँ अज्ञानी लेना कि मूढ़ यानी जो पर पदार्थों में जिसने मूढ़ता की यानी मूर्छित हुआ है और वह ही मुझे मेरा स्वरूप ऐसा मानने वाला वह मोही मूढ़ और अज्ञानी। अज्ञानी तो समझते हैं अब जिसको स्व का ज्ञान नहीं है उस अपेक्षा से उसको अज्ञानी कहा। एक अपेक्षा से तीनों का अर्थ एक ही है एक अर्थवाची शब्द है आप उसे मोही कहो मूढ़ कहो या अज्ञानी कहो। तो यहाँ कहते कोई मूढ़ मोही अज्ञानी तो क्योंकि यहाँ लिखा संस्कृत में तो केचित मूढ़ा तू तो उन्होंने उसके तीन भेद हमारे सामने रखे। अध्यवसान ने जीव कहे छे तो अध्यवसान का अर्थ क्या है कौन बताएगा किसमें एकत्व स्व में उसको मूढ़ कहेंगे। देखो देखो अभी स्व में जो एकत्व कहे करेगा वो सम्यक दृष्टि होगा क्या मिथ्या दृष्टि रहेगा ख्याल में आई बात। हाँ साहब आप जानो अध्यवसान हाँ तो यहाँ जो लिखा है हाँ पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि करना वह और मैं एक में हूं ऐसा मानना इसको अध्यवसान कहा। अने कोई कर्मने जीव कहे छे अभी एक 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 वैरायटी दिखा रहे कि पर पदार्थों में एकत्व करके वो मैं हूं और कोई कर्म ही मैं हूं इस तरह से कर्मने जीवम प्ररूपयंती जीव कहे छे। आप कहे अपरे एटले बीजा कोई अध्यवसानेषु एटले अध्यवसानों मां तीव्र मंद अनुभागम એટલે તીવ્ર મંદ અનુભાગગતને જીવ માને છે, જીવ માન્યતે. અને જો પર પદાર્થો મેં ભી જો એકત્વ બુદ્ધિ કરે ઓર ઉસમેં ભી તીવ્ર એકત્વ બુદ્ધિ ઓર મંદ એકત્વ બુદ્ધિ કરે તો ઉસમેં ભી ડિફરન્શિયેટ કરકે ઉસકો જીવ માનતા હૈ. અને તથા એટલે અને અપર એટલે બીજો કોઈ નો કર્મ અપિચ નો કર્મને જીવમ જીવહ ઇતિ જીવ માને છે. અભી એ નો કર્મ કલ બતાયા થા કિસકો યાદ હૈ? દીપેશભાઈ જાનતે હૈ અભી અબ? હા, મેને નો કર્મ કા નો કર્મ મેં કિસકો કિસકો બતાયા થા? હા બોલો બેન. અચ્છા, આપ બતાના ચાહતી? હા હા, દેહ મન ઓર વાણી, મન વચન કાયા જો હૈ વો એક રીતિ સે હૈ, લેકિન વાસ્તવ મેં ઇસ શરીર કો યાને દેહ કો, દેહ મન ઓર નહીં, ગડબડ હો રહી હૈ, ક્યા બતાયા આપને? શરીર મન વાણી, દેહ કહો શરીર કહો એક યે મન ઓર વાણી ઇસ રૂપ મેં હું, યે એસા કોઈ માનતા હોગા ક્યા કે વાણી રૂપ મેં હું? બ્રહ્મ કોઈ તું માનતી હૈ? કેસા માનતી હૈ બોલો, કે વાણી રૂપ મેં હું એસા કોઈ માનતા હોગા ક્યા? આપ માનતી હૈ? હા, ક્યા માનતી થી? હા, બહુ અચ્છા. યાને મેં બોલ સકતા હું, ઓર જરા કોઈ સાધુ વાધુ હો જાવે ને, મેં મૌન રખ સકતા હું, એસા જો માને યાને વાણી કા કાર્ય મેરે હાથ મેં હૈ, મેં ઉસકા કરતા હું, યાને વાણી મેરી હૈ, જૈસા મેં ઉસકો ટ્વિસ્ટ કરું વૈસા વો હોને વાલી. યે ક્યા હૈ? વાણી મેં એકત્વ બુદ્ધિ, શરીર મેં એકત્વ બુદ્ધિ, શરીર મન ઓર વાણી ઇનકા મેં, મેં મનમાં એસી વૈસી બાત કભી આને નહીં દેતા હું, બિલકુલ મેં બિલકુલ મુજકો ચાહીએ વૈસા હી સોચતા હું, એસા કહેને વાલા આદમી ક્યા હૈ? શરીર મન વાણી મેં એકત્વ બુદ્ધિ કરતા હૈ. ક્યા કહે રહે? દેખો અધ્યવસાનો માં તીવ્ર, યે હો ગયા ના? હા, બીજા કોઈ નો કર્મને જીવ માને છે. અભી મેં સંસ્કૃત ન પડતી હું ગુજરાતી પઢુંગા તો અચ્છી અચ્છા અચ્છી તરહ યાદ રહેગા. અન્ય કોઈ કર્મના ઉદયને જીવ માને છે. કર્મના ઉદયને અને કર્મ કે ઉદય મેં સ્વયં જુડ જાતા હૈ, ક્યા કરે સાહેબ, યે ભોગ તો ભોગને હી પડેંગે, એસા સાસ લગે જૈસા બાત કરેગા. ક્યું? કે યે મુઝે ભોગ જો કરાતા હૈ તો વો કર્મ મેને હી બાંધે હૈ ઓર ઉસકા તો મુઝે હી ફલ ભોગના પડેગા. તો ક્યા કહેતે? કર્મરૂપ કર્મના ઉદયને જીવ માને છે. કોઈ જે તીવ્ર મંદપણા રૂપ ગુણોથી ભેદને પ્રાપ્ત થાય છે તે જીવ છે એમ કર્મના અનુભાગને જીવ ઈચ્છે છે. એને કર્મ કા જો ફલ મિલતા હૈ વો જીવ હી હૈ એસા માનતા હૈ. કોઈ જીવ અને કર્મ બંને મળેલાને જ જીવ માને છે અને અન્ય કોઈ કર્મના સંયોગથી જ જીવ માને છે. આ પ્રકારના તથા અન્ય પણ ઘણા પ્રકારના, એ બહુવિધા શબ્દ કહાં આયા થા પ્રેરણાબેન? હા, કિસમે આયા થા? હા, કોણ સે જ્ઞાન કે? તો તુમ સુબહ આતે ને તુમકો કે માલુમ? યે કલ બાત આઈ થી, કલ પરસો આઈ થી. તો કહેતે અનેક પ્રકારના યાને બહુવિધ, અન્ય પણ ઘણા પ્રકારના દુર્બુદ્ધિઓ એટલે મિથ્યાદૃષ્ટિઓ પરને આત્મા કહે છે તેમને નિશ્ચયવાદીઓ એ એટલે સત્યાર્થવાદીઓ એ પરમાર્થવાદી સત્ય કહેનારા કહ્યા નથી. યાને જો સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ હે, જો સમ્યક જ્ઞાની જીવ હે, જો નિશ્ચયવાદીઓ એ યાને પરમાર્થવાદી, નિશ્ચયવાદી યાને ક્યા પણ નિશ્ચય નહીં ઓર વ્યવહાર નહીં વાલા નહીં, જો કહેતે હૈ કે જૈસા વસ્તુ સ્વરૂપ હૈ પરમાર્થ સે વૈસે જાનને વાલે જીવ યાને સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ ક્યા કહે રહે હૈ, ઇનકો સબકો સત્યાર્થ કહેનારા કહ્યા નથી, યાને યે સહી જાનને વાલે માનને વાલે નહીં હૈ, વે દુર્બુદ્ધિ હૈ એસા બતાયા. દેખો અભી કહેતે હૈ આ જગતમાં આત્માનું અસાધારણ લક્ષણ નહીં જાણવાને લીધે નપુસકપણે અત્યંત વિમૂઢ થયા થકા. ક્યાં કહે રહે દેખો
અસાધારણ લક્ષણ કોણ સા હૈ? હા, જ્ઞાન હૈ.
યાને મેં જ્ઞાન સ્વરૂપ હું યહ ન માનને વાલે જીવ, મેં રાગ સ્વરૂપ હું, મેં પરપદાર્થ સ્વરૂપ હું, મેં કર્મ સ્વરૂપ હું, ઇસ તરહ સે જો માનતે હૈ ઉનકો ક્યા કહા, નપુસકપણે અત્યંત વિમૂઢ થઈ ગયા છે. યે નપુસક કા ક્યું વહાં ક્યા કહેતે હૈ ઉનકો વિશેષણ લગાયા હૈ તો યે બતાતે હૈ કે જૈસા કોઈ નપુસક હોવે તો પ્રજોત્પત્તિ કરને કે લીએ કોઈ કાર્યકારી નહીં હૈ, વૈસે યહાં યે અન્ય અન્ય પ્રકાર સે અપને આત્મા કો માનના હૈ ઉસસે તો ધર્મરૂપી પ્રજા કી ઉત્પત્તિ નહીં હોગી. યે બાત સમજાના ચાહતે હૈ. તો ક્યા કહા, આ જગતમાં આત્માનું અસાધારણ લક્ષણ નહીં જાણવાને લીધે, યાને ઉસ જીવને આત્મા ક્યા હૈ યે જાના હી નહીં, ઉસકા જો વિશેષ યાને અસાધારણ લક્ષણ હૈ વહ નહીં જાના હૈ, ઇસલિયે ક્યા કહે રહે અત્યંત વિમૂઢ થયા થકા, યાને અભી વો બિલકુલ સાદા સુધા મૂઢ નહીં, યે વિમૂઢ તાત્વિક એટલે પરમાર્થભૂત આત્માને નહીં જાણતા એવા ઘણા જ્ઞાની જનો બહુ પ્રકારે પરને પણ આત્મા કહે છે. આગે ક્યાં લિખા, ભકે છે, યાને કુછ ભી બોલતે હૈ ઉસ બોલને કે પીછે કોઈ બલબૂતે પે મતલબ કોઈ ઠોસ સબૂત નહીં હૈ બોલને કે લીએ બોલતે હૈ એસા. આપ ક્યા કહે રહે હૈ, ભકે છે કા અર્થ ક્યા કરના હૈ, જો જી ચાહે વૈસા બોલ લેતે હૈ. અચ્છા, કોઈ તો એમ કહે છે કે સ્વાભાવિક અર્થાત સ્વયમેવ ઉત્પન્ન થયેલા રાગદ્વેષ વડે મેલું જે અધ્યવસાન અર્થાત મિથ્યા અભિપ્રાય સહિત વિભાવ પરિણામ તે જ જીવ છે, કારણ કે જેમ કાળાપણાથી અન્ય જુદો કોઈ કોળસો જોવામાં આવતો નથી તેમ એવા અધ્યવસાનથી જુદો અન્ય કોઈ આત્મા જોવામાં આવતો નથી. ક્યા કહેના હૈ ઉનકા, યે એસા જીવ હૈ કે વો કહેતા હૈ કે હમકો એસે અધ્યવસાય રહિત કોઈ જીવ દિખાઈ નહીં દેતે, ઇસલિયે તો હમ સમ્યક દ્રષ્ટિ ઢૂંઢ રહે, ક્યું કે હમે સમ્યક દ્રષ્ટિ મિલે તો હમ ઉસે દેશ ના લેવે. તો સબકો ક્યાં માનતા હૈ, કાલે કોલસે કે જૈસા કાળા કોળસાની માફક માને છે. તો કહેતા કે એસે વિશ્વ મેં કોઈ મિલે નહીં કે જિસમે યે બાત નહીં, મતલબ અધ્યવસાન નહીં હો એસા કોઈ હમે મિલે હી નહીં હૈ સબ. તો જૈસે જગત મેં કાલા કોયલે કે બિના કોયલા દિખાઈ નહીં દેતા હૈ, વૈસે હમે તો કોઈ ભી અધ્યવસાન રહિત જીવ દિખાઈ નહીં દિયા હૈ, ઇસલિયે જીવ ઓર અધ્યવસાન એક હૈ. યે ઇનકા કહેના. દેખો ફિર સે થર્ડ લાઈન, કોઈ તો એમ કહે છે કે સ્વાભાવિક અર્થાત સ્વયમેવ ઉત્પન્ન થયેલા રાગદ્વેષ વડે મેલું જે અધ્યવસાન અર્થાત મિથ્યાભિપ્રાય સહિત વિભાવ પરિણામ તે જ જીવ છે, કારણ કે જેમ કાળાપણાથી અન્ય જુદો કોઈ કોલસો જોવામાં આવતો નથી તેમ એવા અધ્યવસાન થી જુદો અન્ય કોઈ આત્મા જોવામાં આવતો નથી. એટલે એવો કહી રહ્યા કે અધ્યવસાન ઓર આત્મા એક હી હૈ. અબ દૂસરી વાત, એ એક પોઈન્ટ થઈ ગયા. કોઈ કહે કે કહે છે કે અનાદિ જેનો પૂર્વ અવયવ છે અને અનંત જેનો ભવિષ્યનો અવયવ છે, એવી જે એક સંસરણ રૂપ એટલે ભ્રમણ રૂપ ક્રિયા, તે રૂપે ક્રીડા કરતું જે કર્મ, તે જ જીવ છે. કારણ કે કર્મથી અન્ય જુદો કોઈ જીવ જોવામાં આવતો નથી. ક્યાં કહે કર્મ કબ સે હૈ? હમને તો સુના સત્તર કોડા કોડી સાગર સે અધિક કર્મ કોઈ બાંધી નહીં સકતા હૈ. તો આપ અનાદિ કહે રહે હો, વો કિસ અપેક્ષા સે અનાદિ કહે રહે હૈ? હા બોલો સબ. હા બહુત અચ્છા, પ્રવાહ રૂપ સે, યાને એ નિશ્ચિત કરા રહે હૈ કે અનાદિ કાલ સે પ્રત્યેક જીવ કર્મ સહિત હી હૈ. કર્મ રહિત એસા જીવ હમે દિખાઈ નહીં દિયા હૈ. और ऐसे हम बहुत देखते हैं कि अनंत काल तक भी कर्मों के साथ ही रहने वाले हैं. तो इसलिए कर्म और जीव एक ही होना चाहिए. ये दूसरा पॉइंट दिया उन्होंने. देखो फिर से मैं पढ़ूंगा तो ख्याल में आवे. ये बीच में एक पॉइंट लिखा है ना, उसके आगे कोई कहे छे कि अनादि जेनो पूर्व अवयव छे. ये कर्म कब से है? अनादि से है. तो अवयव यानी उसका पार्ट पहले से चल रहा है ना. अने અનંત જેનો ભવિષ્યનો અવયવ છે, એવી જે એક સંસરણ રૂપ એટલે ભ્રમણ રૂપ ક્રિયા, તે રૂપે ક્રીડા કરતું જે કર્મ, તે જ જીવ છે. ક્યું સાહેબ? કારણ કે કર્મથી અન્ય જુદો કોઈ જીવ જોવામાં આવતો નથી. તો ઉસને સિદ્ધ કો દેખાય નહીં, જાણાય નહીં, માનાય નહીં, એટલે વો સબકો કર્મ સહિત વાલા હી માનતા. કોઈ કહે છે કે તીવ્ર મંદ અનુભવથી ભેદરૂપ થતા દુરંત જેનો અંત દૂર છે, એવા રાગરૂપ રસથી ભરેલા અધ્યવસાનોની જે સંતતિ એટલે પરિપાઠી, તે જ જીવ છે. કારણ કે તેનાથી અન્ય જુદો કોઈ જીવ દેખવામાં આવતો નથી. ક્યાં કહા? દેખો એ જો અનુભવ યાની અનુભાગ જો હમે મિલતા હૈ ના કર્મ કા, ઉસકી વાત કર રહે. કોઈ કહે કે તીવ્ર મંદ અનુભવથી ભેદરૂપ થતા, યાની જો અનુભાગ કા જો હમે વેદન હોતા હૈ, તો દુરંત જેનો અંત એટલે દૂર છે એવા. દુરંત કા અર્થ ક્યાં હૈ? કે જિસકા અંત અભી બહોત દૂર હૈ, હૈ અંત લેકિન અભી દૂર હૈ. રાગરૂપ રસથી ભરેલા અધ્યવસાનોની જે સંતતિ એટલે ઉસકા જો પ્રવાહ જેવો આપને બતાવ્યો, વો તે જ જીવ છે. કારણ કે તેનાથી અન્ય જુદો કોઈ જીવ દેખવામાં આવતો નથી. અબ આગે કહેતે હૈ, કોઈ કહે છે કે નવી ને પુરાની અવસ્થા ઇત્યાદિ ભાવે પ્રવર્તતું જે નો કર્મ યાને શરીર, તે જ જીવ છે. કારણ કે શરીરથી અન્ય જુદો કોઈ જીવ જોવામાં આવતો નથી. क्योंकि इन्हें तो जो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान हो रहा है, दिखाई दे रहा है, उसी के आधार से कह रहा है कि हमको तो कोई दिखता ही नहीं है. शरीर के बिना जीव तो हमने कभी देखा ही नहीं, सपने में भी नहीं देखा है. तो आपको मानना पड़ेगा कि शरीर और जीव एक है. ऐसी उसकी दलील है. दलील है इन द सेंस, ये अन्य अन्य जीवों की इस तरह से मान्यता है, ये बता रहे हैं. कोई एम कहे कि समस्त लोक ने પુણ્યપાપ રૂપે વ્યાપતો જે કર્મનો વિપાક, તે જ જીવ છે. કારણ કે શુભાશુભ ભાવથી અન્ય જુદો કોઈ જીવ જોવામાં આવતો નથી. એ સમજમાં આવ્યા? યાને પ્રત્યેક જીવ, અભી તો એ તો યહાં સંસારિક જીવો કી વાત કર રહે. સંસારિક યાને જો મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ હૈ ઉસકી વિશેષ રૂપ સે યે સમજા રહે હૈ કે હમે તો એસા કોઈ જીવ દિખતા નહીં કે જો શુભ ઓર અશુભ ભાવ સે પરિણત ન હો. વો તો શુભાશુભ ભાવ રૂપે હી પરિણમતા હૈ. ઇસલિયે કહેતે હૈ કે વો કર્મ કે વિપાક કે કારણ વહ એસા શુભાશુભ ભાવ રૂપ સે, યાને કર્મ ફલ દેતા હૈ તો ઉસકે કારણ યે શુભ અશુભ પરિણામ કરતા હૈ. तो हमें तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता है साहब कि जो इन जो पुण्य और पाप रूप कर्मों के अलावा कोई जीव हो भी सकेगा। अब आगे छठा पॉइंट, कोई कहे छे के साता असाता रूपे व्याप्त चे समस्त तीव्र मंदत्व गुणों तेवड़े भेद रूप थतो जे कर्मनो अनुभव तेज जीव छे, कारण के सुख दुख थी अन्य जुदो कोई जीव देखवामा आवतो नथी। ये तो अभी एक बोल समझ गया तो आगे के बोल समझने में आने चाहिए। सातवां पॉइंट, कोई कहे छे के शिखंडनी जेम उभय रूप मळेला जे आत्मा अने कर्म ते बन्ने मळेला ज जीव छे, कारण के समस्तपणे एटले संपूर्णपणे कर्मथी अन्य जुदो जीव कोई जीव जोवामां आवतो नथी। नहीं समझे? यानी क्या कहते हैं, जैसा श्रीखंड काहे से बनता है, दही और गुड़ से। वो लोग गुड़ की बात बताते हैं, हम शक्कर ले जो आपको खाने का है वो। तो वो क्या है, गुड़ होता है या शक्कर होती है मीठी, और दही होता है खट्टा। तो दोनों का जब हम मिश्रण करते हैं तो एक जुदा ही प्रकार का स्वाद तैयार होता है। तो वैसा यहाँ कह रहे हैं, कोई कहे छे के शिखंडनी जेम उभय रूप मळेला जे, कौन दोनों एक साथ मिले हुए, कौन वहां दही और शक्कर या गुड़, और यहाँ आत्मा अने कर्म। क्या पूछ रहे सर, ये पहली लाइन में क्या कर्म है? पहले शरीर की बात हो गई ना। जेम उभय रूप मळेला आत्मा अने कर्म ते बन्ने मळेला ज जीव छे, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वही जीव है, कारण के समस्तपने संपूर्णपने कर्म थी अन्य जुदो कोई जीव जोवामां आवतो नथी। यानी वो बिल्कुल ऐसे एक एक पॉइंट पे अड़क के बैठा, अटक के बैठा है, इसलिए वह मोही है, अज्ञानी है, ऐसा समझा। कोई कहे छे के अर्थक्रिया में, अर्थक्रिया यानी प्रयोजनभूत क्रिया में समर्थ एवो जे कर्मनो संयोग तेज जीव छे, कारण के जेम आठ लाकड़ा ना संयोग थी अन्य जुदो कोई खाटलो जोवामां आवतो नथी। क्या बताया, ये जो पहले के जमाने में लकड़ी के खाटले बनाते थे ना, तो चार पहिए के चार टुकड़े और ऐसे एक लंबा और एक टूका ऐसा, वो चौकट फ्रेम फ्रेम, उसमें भी चार लकड़े होते हैं, वो चार और चार आठ टुकड़ों के बिना खाटलो जोवामां आवतो नथी। यानी ऐसी खटिया, क्या बोलती, खटिया दिखाई नहीं देती है। उसी तरह इन आठ कर्मों के अलावा कोई जीव दिखाई नहीं देता है। देखो देखो क्या कह रहे, बहुत बढ़िया। कोई कहे छे कि ये हो गया, अर्थ क्रिया में एटले प्रयोजनभूत क्रिया में समर्थ है वो जे कर्मनो संयोग तेज जीव छे, कारण के जेम आठ लाकड़ाना संयोग थी अन्य जुदो कोई खाटलो जोवामां आवतो नथी, तेम कर्मना संयोग थी अन्य जुदो कोई जीव जोवामां आवतो नथी। आठ लाकड़ानू मळी खाटलो थयो त्यारे अर्थक्रियामां समर्थ थयो, ते रीते अहीं पण जाणवुं। आ प्रमाणे आठ प्रकार तो आ कह्या, अने एवा एवा अन्य पण अनेक प्रकारना दुर्बुद्धिओ अनेक प्रकारे परने आत्मा कहे छे, परंतु तेमने परमार्थना जाननाराओ सत्यार्थवादी कहता नथी। यानी जो इस तरह से गलत गलत मानते हैं उनको, जो परमार्थ को जानने वाले हैं, परम अर्थ यानी स्वस्वरूप को, यानी अपने जिन्होंने आत्मानुभूति की है, सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, ऐसे लोग इन सबको सत्यार्थवादी यानी वाद यानी विशेष, यहाँ क्या कहते हैं, वाद यानी यहाँ कथन नहीं लेना है हमें, सत्यार्थवादी यानी उस पक्ष के। आप क्या कह रहे हैं?
नहीं नहीं, मैं कथन कर रही थी।
हाँ जी,
आपको शब्द चाहिए था ना, इसलिए मैंने कथन।
हाँ, बोलो बोलो बोलो। सत्यार्थवादी कहता ना चाहिए,
सत्य बोलने वाले जो सत्यार्थ सत्य का कथन करने वाले जो है, ऐसे जो परमार्थ के जानने वाले हैं, वो ऐसा नहीं कहते जैसा अभी हमने ऊपर की बातें देखी वैसा।
अच्छा, मैं ऐसा अर्थ ले रहा था कि इस तरह से मानने वालों को जो परमार्थ के जानने वाले हैं उनको सत्यार्थवादी नहीं कह रहे हैं, वो असत्य बात कर रहे हैं।
नहीं, वे सत्य बोलने वाले नहीं है।
हाँ, तो वादी का शब्द अटक गया तो
यानी हाँ, खोटी मान्यता वाले हैं, रूसी को बताने वाले हैं।
भावार्थ
हाँ।
जीव अजीव बनने अनादि थी एक क्षेत्राव गाह संयोग रूप मड़ी रहा छे। तो यहाँ जीव और अजीव इन ये दोनों कैसे एक क्षेत्र में ही रहने वाले हैं, तो वहाँ क्या अवगाना एक क्षेत्र में अवगाना रूप यानी योग रूप यानी मिलकर मड़ी रहा छे। अने अनादि थी ज जीवनी उद्गलना संयोग थी अने विकार सहित अवस्थाओं थई रही छे। परमार्थ दृष्टिए जोता जीव तो पोताना चैतन्यत्व आदि भावों ने छोड़तो नथी अने उद्गल पोताना मूर्तिक जड़त्व आदि ने छोड़तो नथी। याने कोई भी पदार्थ कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, ये मूल बात बता रहे। क्या कह रहे हैं? परमार्थ दृष्टि ज्योता यानी सही वास्तविक स्वरूप जैसा है उस अपेक्षा से देखते हुए जीव स्वयं का चेतनत्व जो स्वभाव है उसको छोड़ता नहीं है, और जो शरीर है वह क्या है? पुद्गल है, और पुद्गल पोतानो मूर्तिकपणु यानी मूर्तिक और जड़त्व आदि ने छोड़तू नहीं, परंतु जे परमार्थ ने जानता नहीं ते वो संयोग थी रहेला भावों ने थेला थेला संयोग थी थेला भावों ने ज जीव कहे छे। कारण के परमार्थे जीवनु स्वरूप पुद्गलती भिन्न सर्वज्ञ ने देखाय छे, तेमज सर्वज्ञ नी परंपरा ना, ये परंपरा चाहिए ना, परंपराना आगम थी जानी शकाय छे। तेथी जेम जेमना मतमा सर्वज्ञ नथी तेवो पोतानी बुद्धि थी अनेक प्रकारनी कल्पना करी कहे छे। ये देखो, ये बहुत वाक्य महत्व का है। यहाँ क्या बताते हैं कि जेमना मतमा कहाँ गया? जेमना मतमा सर्वज्ञ नथी ते वो पोतानी बुद्धि थी अनेक कल्पना करी कहे छे। अभी वो कौन कौन कल्पना करने वाले हो उसके पहले हम देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। देखो, जो सर्वज्ञ होंगे, आप जानते हैं कि जैन धर्म में कहो या जैन मान्यता अनुसार कहो, सर्वज्ञ कितने हैं? 24 अनंत। कैसा आनंद? कैसा? हम तो 24 तीर्थंकर को जानते हैं, 20 तीर्थंकर महाविदेह के, और आप आनंद कैसा बोल रहे हैं? शाबाश। अरे आनंद सिद्ध है अभी वर्तमान में। कब से है वर्तमान में? कब से आए? तो अनादि काल से सिद्ध 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 है ही है। और जो सिद्ध हुए वो तो पहले संसारी थे, तो वही सिद्ध हुए, तो वो जब सिद्ध संसारी थे तब उनके पहले वाले ऐसा कहाँ जाएंगे हम अनादि काल से। तो ये अनंत सर्वज्ञ है, और अनंत सर्वज्ञ में से हम अनंत तीर्थंकर हुए ऐसा मानते पहले, ख्याल में? तो इन सब का कथन एक ही है, यानी उनमें कोई दो भेद नहीं है। क्यों? कि हम सर्वज्ञ ही उसी को कहते हैं कि जो पूरे विश्व को, पूरे विश्व के पदार्थों को, उनके द्रव्य गुण पर्यायों को, तीन काल की अवस्थाओं को बिल्कुल जैसे के वैसे जानते हैं। तो अभी जैसा है वैसा एक ने जाना, दूसरे सर्वज्ञ ने वैसा ही जाना, तीसरे सर्वज्ञ ने यानी तीर्थंकर ने ऐसा ही जाना। तो अनादि काल से आज तक जितने तीर्थंकर हुए हैं उनके कथन में कोई भेद नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो वो केवल सर्वज्ञ है, वितरागी भी है। तो इसलिए कहीं उनके कथन में कहीं गड़बड़ी हो जाए, दो द्वैत हो जाए, यानी दो भिन्नपना आ जाए, ऐसी बात ही नहीं। और जिनके मत में अभी क्या लिखा देखो, देखो ये कह रहे के, एक दो मिनट, जेमना मतमा सर्वज्ञ नथी, यानी जो सर्वज्ञ को मानते नहीं है या सर्वज्ञ का स्वरूप नहीं समझते हैं, वैसे तो सभी कहते हैं हमारे सर्वज्ञ हैं, तो ते वो पोतानी बुद्धि थी। तो हम देखते हैं ना ये अभी आगे जो नाम दिए ना सब, वो इनमें ऐसा ही कि प्रत्येक को जो कोई लिखने वाला आएगा अपने मन के अनुसार लिखेगा, और पहले वाले ने क्या लिखा है ये पता ही नहीं रहेगा। तो अनेक प्रकार की कल्पना करी कहे छे, तेमाथी वेदांती मीमांसक सांख्य योग बौद्ध नैयायिक वैशेषिक चार्वाक आदि मतोना आशय लई आठ प्रकार तो प्रकट कह्या, अने अन्य पन पोतपोतानी बुद्धि थी अनेक कल्पना करी अनेक प्रकारे कहे छे, ते क्या सुधी कहवा। हम कहते हैं मिथ्यात्व की कथाएं बताने लगे तो क्या सुधी केवा, ऐसी बात है। अब हम बाकी की बात कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूजे लो कालो सोवाणी मस्तकर्ण मो सदा देत हो।